एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी पहली मेजबान और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो सदियों पुरानी है, पर आज भी पता नहीं क्यों बहुत ताजा लगती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं महान सूफी कवि जलाल अल-दीन रूमी की, 13वीं सदी के कवि।
हाँ, और खास तौर पर उनकी कविताओं के एक संकलन की, से नथिंग, जिसका अनुवाद इराज अनवर और एनी ट्विटी ने किया है।
और ये किताब आज इतनी जरूरी क्यों लगती है? क्या खास है इसमें?
मुझे लगता है आज की जो दुनिया है ना, इतनी भाग दौड़, इतना शोर, उसमें रूमी की बातें जैसे प्रेम या खुद को खोजना, वो जो मौन की ताकत है,
हाँ,
और वो अंधेरा सच, ये सब ना एक ठहराव लाती हैं, जैसे एक आईना दिखाती हैं हमें।
सही कहा, ये सिर्फ कविता नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस किताब के जरिए रूमी की सोच की गहराई को थोड़ा महसूस करें।
और ये भी समझें कि अनुवादकों का क्या रोल रहा है, इराज अनवर और एनी ट्विटी, क्योंकि उनकी वजह से ही ये आवाज हम तक इस तरह पहुंची है।
हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। मतलब रूमी तो है ही महान, पर अनुवादक भी तो पुल का काम करते हैं ना?
बिल्कुल, इराज अनवर वो ईरान से हैं। फारसी जबान, कल्चर, सूफी परंपरा, उनकी पकड़ बहुत गहरी है। वो जैसे रूमी के शब्दों के गार्डियन हैं,
कि मतलब कहीं खो ना जाए।
हाँ, कि मूल भाव बना रहे। और दूसरी तरफ हैं एनी ट्विटी,
अमेरिकी कवित्री।
अच्छा, उन्हें अंग्रेजी पोएट्री की कला पता है। देखिए, सिर्फ मतलब बताना काफी नहीं होता, खासकर शायरी में।
नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें जो लय है, जज्बा है।
वही तो ट्विटी का काम है, उस असली मतलब को ऐसी अंग्रेजी कविता बनाना जो दिल को छू जाए।
अरे वाह, तो ये जोड़ी मतलब कमाल की है।
हाँ, ये उन दोनों चीजों से बचते हैं, एक तो वो बहुत सूखा एकेडमिक स्टाइल,
हाँ, जो पढ़ने में मजा नहीं आता।
और दूसरा वो बहुत पॉपुलर हल्का फुल्का अनुवाद जिसमें गहराई कम हो जाती है।
सही, तो इनका फोकस क्या है?
वफादार कलात्मकता, मतलब रूमी की 800 साल पुरानी आवाज को पूरी ईमानदारी और खूबसूरती से हम तक पहुंचाना।
बहुत बढ़िया, चलिए अब किताब पर आते हैं, से नथिंग। ये क्या है, बस कविताओं का कलेक्शन है?
कलेक्शन तो है, पर सिर्फ उतना नहीं, इसे एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा की तरह बुना गया है, जैसे रूमी की आंखों से हम सूफी दुनिया के दिल में झांक रहे हों।
अच्छा, तो ये किसके लिए है, मतलब कौन पढ़े इसे?
मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं कि ये जो रोज की दुनिया है, लॉजिक है, दिमाग है, इससे परे भी कुछ है, कोई गहरी सच्चाई।
हाँ,
ये रूमी के खुद के सफर को भी दिखाती है, कैसे वो एक बड़े विद्वान से, मतलब एक तरह से ईश्वर के दीवाने बन गए।
और ये आसान नहीं रहा होगा।
बिल्कुल नहीं, किताब का आइडिया यही है कि हमें रूमी की उस दुनिया से मिलाए जो अक्सर कुछ मशहूर कोट्स में ही सिमट जाती है।
हाँ, वो कोट्स तो हर जगह दिखते हैं,
पर ये किताब गहराई में ले जाती है, जहां तर्क थोड़ा पीछे छूट जाता है और अनुभव वो आगे आता है।
तो ये सफर कैसा है, मतलब कहाँ से शुरू होता है?
ये एक अंदर का सफर है, शुरुआत होती है एक गहरे दर्द से, एक तड़प से। रूमी इसे बांसुरी की शिकायत कहते हैं।
बांसुरी की शिकायत?
हाँ, जैसे बांसुरी अपने असली घर, वो जो सरकंडे का जंगल होता है, उससे बिछड़ कर रोती है, वैसे ही आत्मा अपने दिव्य स्रोत से दूर होकर बेचैन है।
अरे वाह, क्या उपमा है।
फिर ये रास्ता जाता है विनाश की मधुशाला की तरफ।
विनाश की मधुशाला, ये सुनने में थोड़ा अजीब है।
हाँ, पर ये कोई असली जगह नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है जहां इंसान अपने समाज के नियम, अपनी झूठी इज्जत, अपना मैं, अहंकार, उसे छोड़ने लगता है।
अच्छा, मतलब सब कुछ तोड़ देना।
हाँ, एक तरह से यहां दिव्य प्रेम का ऐसा नशा चढ़ता है कि पुरानी पहचानें मिटने लगती हैं। इसे रूमी फना कहते हैं, स्वयं का विनाश।
फला, ये शब्द सुना है, पर ये तो डरावना लगता है, अपना मैं खो देना।
लगता है, पर रूमी कहते हैं कि ये विनाश असल में आजादी है, मुक्ति है।
और इसके बाद?
इसके बाद आता है बका, यानी ईश्वर में नया जीवन पाना, वो मंजिल जहां एहसास होता है कि हम और ईश्वर कभी अलग थे ही नहीं।
जैसे बूंद सागर में मिल गई।
बिल्कुल, तब समझ आता है कि वो जो अलगाव महसूस हो रहा था, वो बस एक पर्दा था, एक भ्रम था।
तो चलो इस यात्रा के विभिन्न चरणों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पुस्तक में पारंपरिक अध्याय नहीं है, लेकिन अनुवादकों ने कविताओं को इस तरह व्यवस्थित किया है कि वो सूफी मार्ग के चरणों को दर्शाते हैं।
अच्छा, तो पहला पड़ाव क्या है?
पहला है अलगाव का क्रंदन और लालसा की चिंगारी। यहीं से सब शुरू होता है, वो एहसास कि कुछ कमी है, कोई गहरी प्यास है।
वो बांसुरी वाला रोना?
हाँ, वही आत्मा की आवाज जो अपने घर से, अपने स्रोत से दूर है। रूमी कहते हैं कि हमारी जिंदगी की ज्यादातर बेचैनी इसी आध्यात्मिक भूलनेपन से है। हम भूल गए हैं कि हम कितने बड़े हैं।
तो ये दर्द एक तरह का सिग्नल है।
बिल्कुल, कोई सजा नहीं बल्कि एक पुकार है वापस लौटने की। प्रियतम ईश्वर या परम सत्य इसी तड़प का केंद्र है।
इन कविताओं में फिर कैसी भावनाएं हैं? उदासी?
उदासी है, खोज है, प्यास है, पर ना उम्मीदी नहीं। ये सफर की शुरुआत है। जैसे वो कहते हैं ना, तुम्हारा काम प्रेम की तलाश करना नहीं है,
हाँ,
बल्कि अपने भीतर उन बाधाओं को खोजना है जो तुमने उसके खिलाफ खड़ी कर दी हैं।
बिल्कुल
तो ये पहला पड़ाव उन बाधाओं को महसूस करने का है।
ठीक है, और फिर दूसरा पड़ाव, वो विनाश वाला?
हाँ, विनाश का मार्ग और खंडरों की मधुशाला। अब सिर्फ महसूस नहीं करना, अब कुछ करना है, और वो करना है छोड़ना, मिटाना, फना का रास्ता।
खंडरों की मधुशाला, ये रूपक मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है।
है ना?
ये वो जगह या वो अवस्था है जहां आपकी इज्जत, आपका सीखा हुआ ज्ञान, आपके सारे मुखौटे, वो सब ढह जाते हैं। यहां दिमाग नहीं, दिल चलता है। दीवानगी चाहिए।
मतलब अपना जो बना बनाया सेल्फ है उसे तोड़ना पड़ेगा।
हाँ, रूमी यही कहते हैं, ईश्वर को पाना है तो ये कीमत चुकानी होगी। यहां समर्पण की बात आती है, अपनी समझ को छोड़ देना।
और शम्स तबरीजी का जिक्र भी यहीं आता है।
हाँ, रूमी और शम्स का वो रिश्ता, वो खुद में एक विनाशकारी मधुशाला जैसा था जिसने रूमी को पूरी तरह बदल दिया। वो उबलते चने का उदाहरण देते हैं।
उबलता चना?
हाँ, कि चना जब तक सख्त है किसी काम का नहीं, उसे उबलना पड़ता है, नरम होना पड़ता है। अहंकार भी ऐसा ही है, उसे गलना पड़ता है।
इन कविताओं में फिर बहुत जोश होगा, जुनून।
बिल्कुल, एक जंगलीपन है। ईश्वर के लिए शराबी हो जाना, दरवेशों का नाचना, पतंगे का लौ की तरफ जाना, ये सब उसी स्व को मिटाने की तस्वीरें हैं। और ये डर से नहीं, एक अजीब से आनंद से होता है।
तो इस आग से गुजरने के बाद, इसके बाद आता है तीसरा पड़ाव, मिलन का सागर और प्रियतम का रहस्य। फना के बाद बका, ईश्वर में जीना, वो बूंद अब सागर बन गई है।
यहां कर वो एकता समझ आती है कि सब एक हैं।
हाँ, जिसे तौहीद कहते हैं। समझ आता है कि मैं और ईश्वर अलग थे ही नहीं। सब कुछ खोकर सब कुछ पा लेना, अपना छोटा सा मैं मिटाकर अनंत हो जाना।
रूमी की वो लाइन है ना, मैं सूरज की किरण हूं, मैं गोल सूरज हूं।
हाँ, मैं सुबह का कोहरा हूं और शाम की सांस। क्या कमाल का एहसास है एकता का।
इन कविताओं का माहौल कैसा है? शांति,
गहरी शांति, ठहराओ, जैसे तूफान के बाद का समंदर। भाषा और रहस्यमयी हो जाती है क्योंकि वो उस अनुभव को बताने की कोशिश कर रही है जो शब्दों से परे है। अब हर चीज में उसी प्रियतम का चेहरा दिखता है।
और फिर आखिरी पड़ाव, जो किताब का नाम भी है।
हाँ, मौन की भाषा, कुछ मत कहो। ये उस आखिरी अवस्था की तरफ इशारा है जहां शब्द भी कम पड़ जाते हैं।
ये थोड़ा अजीब है ना, एक कवि कह रहा है कुछ मत कहो।
अजीब लगता है, बट शायद यही सबसे गहरी बात है। रूमी कहते हैं, भाषा सिर्फ उंगली है जो चांद की तरफ इशारा करती है, चांद नहीं। असली मिलन, असली अनुभव तो मौन में है। वो कहते हैं मौन ईश्वर की भाषा है, बाकी सब खराब अनुवाद है।
तो इस हिस्से में कविताएं कैसी हैं? छोटी?
हाँ, अक्सर छोटी, सीधी चोट करने वाली। चुप रहो, किताब बंद करो, आत्मा को बोलने दो, जैसे हमें पढ़ने सोचने से रोककर बस सुनने को कह रही हूं।
अपने अंदर के मौन को।
बिल्कुल, जहां असली संवाद होता है। वो कहते हैं, चुप रहो, केवल ईश्वर का हाथ ही तुम्हारे दिल का बोझ हटा सकता है। सब कुछ जाने दो, कुछ मत कहो, ये परम समर्पण है।
तो ये चार पड़ाव मिलकर एक पूरा नक्शा बनाते हैं।
हाँ, सूफी मार्ग का नक्शा। और इस पूरे सफर में कुछ बातें, कुछ थीम बार बार आते हैं।
सबसे पहले तो इश्क ही है ना?
दिव्य प्रेम।
वही
रूमी के लिए ये सिर्फ एक भावना नहीं, ये कायनात को चलाने वाली शक्ति है, आग है, नशा है, समर्पण मांगने वाली ताकत है।
हमारे यहाँ भक्ति पौराणिक में भी तो प्रेम को ही मुख्य माना है।
बिल्कुल। फिर दूसरा है अहंकार का विनाश, फना। वो झूठा मैं जो पर्दा है, उसे मिटाना जरूरी है।
वो उबलता चना या पतंगा?
हाँ, ये मरने से पहले मरना है, सोचो हमारे रोज के झगड़ों में, ऑफिस में, ये अहंकार कितना कुछ करवाता है ना?
सही बात है।
और तीसरा?
तीसरा कि प्रियतम ही एकमात्र सत्य है। ईश्वर दूर नहीं, यही है, हर चीज में, हमारे दिल में, हर चीज में उसी की झलक देखना।
क्या हम ऐसा कर पाते हैं?
कभी कभी शायद, प्रकृति में या रिश्तों में।
हाँ।
चौथा, रूमी बुद्धि और किताबी ज्ञान की सीमाओं की बात करते हैं। वो दिमाग की चालाकी से ज्यादा दिल की दीवानगी को महत्व देते हैं।
मतलब सोचना कम, महसूस ज्यादा करना।
कुछ ऐसा ही। कहते हैं तर्क दरवाजे तक ले जाएगा पर खोलेगा इश्क। कोरे रस्म और रिवाज उन्हें पसंद नहीं।
ये सोचने वाली बात है, क्या हम चीजों को ओवरथिंक करते हैं? शायद हाँ। फिर वो आध्यात्मिक नशे का रूपक इस्तेमाल करते हैं, शराब, मधुशाला, ये सब उस दिव्य प्रेम के परमानंद के प्रतीक हैं।
इसे लिटरल नहीं लेना है।
बिल्कुल नहीं, ये रूहानी मस्ती की बात है, और आखिर में वो मौन का विरोधाभास। कुछ मत कहो।
कि शब्द जहां खत्म होते हैं, बात वहां शुरू होती है।
हाँ, परम सत्य को सिर्फ मौन में महसूस किया जा सकता है, वो जो मैदान वाली बात है, गलत और सही से परे।
हाँ, एक मैदान है, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।
वो मैदान शायद यही मौन है जहां दुनिया की बातें खत्म हो जाती हैं।
ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर अपनी रोज की जिंदगी में इसे कैसे लाएं? कुछ तरीका है?
देखो, वो सही गलत से परे मैदान खोजना शायद रोजमर्रा में भी मुमकिन है, जब हम किसी बहस में सिर्फ जीतने के बजाय समझने की कोशिश करें।
हाँ, या बस कुछ पल चुपचाप बैठें, बिना फोन के।
बिल्कुल, वो माइंडफुलनेस ही तो है, और वो अहंकार वाली बात।
हाँ, उबलता चना।
एकदम से रिएक्ट करने के बजाय सोचें, क्या इसमें कुछ सीखने लायक है? क्या ये मुझे नरम बना सकता है? आसान नहीं है, पर कोशिश तो कर सकते हैं।
रिश्तों में भी तो ये काम आ सकता है, दूसरों में प्रियतम का चेहरा देखना, मतलब उनकी अच्छाइयों पर फोकस करना।
हाँ, और गलतियों को माफ करना, गहराई से सुनना, और अगर दुख मिले तो याद रखना कि रूमी के लिए दर्द भी गहरा जाने का रास्ता हो सकता है।
और अपने काम में, क्रिएटिविटी में,
वहां भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय कभी कभी दिल की सुनना, इंट्यूशन पे भरोसा करना।
हाँ, शायद वहीं से कुछ नया निकले। और ये याद रखना कि असली खुशी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है।
तो ये उन लोगों के लिए भी है जो शायद किसी एक धर्म के दायरे में नहीं बंधना चाहते। रूमी का रास्ता प्रेम का है, अनुभव का है।
इस पूरी चर्चा में मेरे लिए सबसे अहम बात शायद यही रही कि कैसे रूमी मुश्किल चीजों को, दर्द, विनाश को भी जरूरी मानते हैं। हम तो भागते हैं इनसे।
हाँ, वो इन्हें गले लगाने को कहते हैं, और मेरे लिए वो मौन वाली बात, एक शब्दों का जादूगर कह रहा है चुप रहो, ये याद दिलाता है कि सबसे गहरे अनुभव शायद कहे नहीं जा सकते।
और हाँ, अनुवादकों का काम भी जबरदस्त है, अनवर और ट्वीटे।
बिल्कुल, तो सार यही है कि रूमी का रास्ता दिल का रास्ता है, प्रेम से शुरू, अहंकार को मिटाते हुए, और अंत में उस मौन और एकता में पहुंचना जहां सारे सवाल शांत हो जाते हैं।
ये कोई थियरी नहीं, जीने का तरीका है।
और शायद यही आज के लिए हमारा आखिरी विचार भी हो सकता है। रूमी हमें मौन होने को कहते हैं, क्या हम कोशिश कर सकते हैं इस हफ्ते, बस कुछ पल?
हाँ,
जब हम सब शोर से दूर हटकर बस खामोशी को सुने, अपने अंदर की खामोशी को, पता नहीं उसमें क्या सुनाई दे जाए।
कोशिश करने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब, और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।